ओम शांति। आज का टॉपिक ज्ञान में चलते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे न हटें। क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, क्या स्वीकार करेंगे, किसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, आज इस पर विचार करेंगे सभी। हर आत्मा निरंतर आगे बढ़ना चाहती है, पर कुछ बाधाएं आत्माओं को रोकती हैं। मैं आज सोच रहा था, कई कई साल पहले कुमारों की लिस्ट निकली थी, 80,000 थे। उनमें से अब मुश्किल से 1,000 होंगे, 70,000 डबल होने चले गए। नए आ गए, बहुत सारे नए आ गए हैं, संख्या कम नहीं हुई, अब शायद 1.5-2 लाख हो। लेकिन जो 80,000 थे उनमें से 70,000 दिखाई नहीं देते, और कुमारियों का तो हाल इससे भी ज्यादा ज्यादा है। वो तो शायद 80,000 में से 500-700 ही बचती हूँ। हम निरंतर आगे बढ़ें, बाधाएं हमें रोक न पाए, हम परीक्षाएं देने के लिए भी तैयार रहें, और परिस्थितियों में स्वस्थिति को न बिगाड़ें, तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी। सब चिंतन करेंगे निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या नहीं करना है। बोलो, क्या नहीं करना है? हाँ, 5-5 पॉइंट निकाल लें, क्या करना है और क्या नहीं करना। ज्यादा लंबे चौड़े नहीं निकालेंगे, पॉइंट्स तो बहुत हो सकती हैं। जैसे ज्ञान में चलते हुए हमें दूसरों को देखकर नहीं चलना है, जैसे लौकिक पढ़ाई में जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो कमजोर स्टूडेंट्स को देख के ढीले नहीं होते, उनका अपना लक्ष्य होता है, कितने मार्क्स लाने हैं, वो अपने लक्ष्य को देखते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं। हम भी दूसरों को नहीं देखेंगे, जब दूसरों को देखते रहते हैं वो ढीले होते रहते हैं। दूसरों को देखने में दूसरों के अवगुण भी आ गए, वो हमें नहीं देखना है। सब एक यात्रा पर चल रहे हैं। एक ने आज मुझे फोन किया, बहुत अच्छा कुमार, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहा है, कहा मैं जैसे जैसे योग बढ़ा रहा हूँ कुछ कमियाँ एकदम सामने आती हैं। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है, मेरा योग गलत है, बाबा मुझे प्यार नहीं करता, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब कोई भी आत्मा अच्छी साधना करती है तो कमजोरियाँ निकलती हैं, वो निकलने आ रही हैं, वो विदाई देने आ रही हैं। उसको ये समझ में आया, खुश हो गया, निराशा हो गई थी थोड़ी कि ये सब क्या होने लगा है मुझे। और जो अच्छा योग नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा, अंत में जब वो थोड़ा भी अच्छा योग करेंगे तो अंत में एक साथ सारी कमियां निकल आएंगी, और तब उनको सहन करना अत्यंत कठिन होगा। दूसरी बात, आप बोलेंगे निरंतर आगे बढ़ना है तो क्या नहीं करना है, हैं? संशय बुद्धि नहीं बनना है। संशय के बड़े रॉयल रूप होते हैं, ठीक कहा आपने। परीक्षाएं आने पर बाबा की शक्तियों में, बाबा की मदद में, बाबा के प्यार में बहुतों को संशय आने लगते हैं। संशय आने से बाबा की दृष्टि हट जाती है, इसका बहुत नुकसान होता है। तीसरी बात, हाथ उठा के बोलेंगे, हाँ हाँ नहीं, हम कर रहे क्या नहीं करना है। पर चिंतन, पर दर्शन, टाइम वेस्ट, इनसे बचना है। जो संगम युग पर अपना अनमोल समय इन चीजों में बिता देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और चलो चौथी बात, माताओं की ओर से देख लो किस कारण से गिरावट आती है पुरुषार्थ में, वो ध्यान में रख के बोलो। परमत पे चलने से बहुत लोग हैं, लौकिक कभी कभी अलौकिक में भी फोर्स हो जाता है। कुमारों के साथ बहुत फोर्स होता है, मैं कहानियां सुनता हूँ, बड़ी दया की बात भी होती है। हम उन्हें मदद करेंगे सभी के, लौकिक वाले विवश कर देते हैं ज्ञान छोड़ने के लिए, भिन्न भिन्न तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं। बहुत अच्छे कुमारों की कहानियां, कल ही कोई बहन ने, टीचर बहन ने फोन किया, सुनाया कि बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत अच्छे कुमारों को परिवारों ने ऐसा विवश कर दिया कि वो खींच के चले गए उनकी ओर। एक को तो 30 लाख रुपए दे दिया, जाओ ये काम करो, इधर विदेश जाने का प्रोग्राम बना दिया, तंत्र मंत्र करा दिया उस पर, उसकी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर दिया। तो इन सब चीजों का सामना करने के लिए भी आत्मा में बहुत ताकत चाहिए। पांचवी बात बोलो, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है, इससे माया के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जिसको निरंतर आगे बढ़ना है उसको क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल कभी गिरावट ना हो। पहली कह रहे हैं हम, डॉक्टर बैठे हैं, बोलो हैं? उसमें पहली बात, अमृत वेला सुंदर स्थिति में व्यतीत हो। केवल जग जाए इतना नहीं, अच्छी स्थिति में, अच्छी प्रैक्टिस में हमारा वो सुंदर समय रोज व्यतीत हो। पिछली बार हमने चर्चा की थी बाबा से वरदान लेना, किया है सुरु? किया है? किस किस को याद रहा, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, थोड़ों को रहा, फिर से याद कर लेंगे। रोज सवेरे बाबा के पास जाकर बाबा का हाथ सिर पर, बाबा की दृष्टि लेते हुए उससे कुछ वरदान लेंगे और उसके नशे में रहेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और उसे स्मृति स्वरूप होकर यूज करेंगे। दिन में एक वरदान ले लें, उसका 7 दिन तक ही अभ्यास करेंगे। वरदान वो नहीं जो मुरलियों में आते हैं लाइन में लंबी में, वो नहीं। वरदान है जैसे तुम विघ्न विनाशक हो, तुम विजयी रतन हो, तुम मास्टर दुख हरता हो, ऐसे वरदान। जो वरदान विनाश काल में हमें बहुत काम आएंगे, विश्व कल्याण में, ऐसे वरदान 5 सुन लेना आप, और एक एक के लिए 7-7 दिन अभ्यास करना। बहुत सुखद फीलिंग होगी। रोज एक बार अमृत वेले प्रभु मिलन का सुखद अनुभव हो जाना चाहिए। मिलन हुआ, सुख मिला मिलन का, केवल योग लगाया ये नहीं, मिलन हुआ। दूसरा क्या करना चाहिए बोलो? हाँ, मुरली, मुरली में संपूर्ण रस हो, मुरली मिस करना आदत न बन जाए। ये नहीं कि मुरली सुन रहे नहीं सुन रहे उस बारे में अलबेले हैं, थोड़ी सेवा मिल गई तो सेवा को प्रायोरिटी दे दी, मुरली सेकेंडरी, सेवा पहले, मुरली तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। पढ़ने से मुरली की शक्तियां नहीं मिलती। क्या अनुभव है जो केवल मुरली पढ़ते हैं, क्लास में नहीं सुनते। वो जानते होंगे क्लास में एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनना, उससे जो आत्मा को बल मिलता है वो खुद पढ़ने में नहीं मिलता। खुद पढ़ने वाले कैसे होते हैं, फटाफट जाना है ऑफिस में, 5-7 मिनट में इधर से उधर पर्चे पलटे, पढ़ ली मुरली, अटेंडेंस लग गई है। मिलेगा इससे कुछ? मुरली सुनने का अर्थ है ज्ञान का बल स्वयं में भर लेना। मुरली सुनने का अर्थ है हमारे विचार एकदम से महान हो जाएं, हम स्मृति स्वरूप हो जाएं। मुरली इसलिए सुनते हैं, रोज बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें याद दिलाते हैं, स्मृति स्वरूप कराते हैं हमें। जो हम रोज भूल जाते हैं मुरली सुनते फिर याद आता है। सब भूल जाते हैं, मैं भी देखता हूँ हम भी भूल जाते हैं, मुरली सुनते हैं फिर याद आ जाती है सब सुंदर बातें। मुरली सुनने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमारे मस्तिष्क में और हमारी बुद्धि में जो सुंदर विवेक भरा है, जो हमने भरा है ज्ञान से, वो इमर्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है वो। इसलिए मुरली पर संपूर्ण अटेंशन। तीसरी बात, कभी गिरावट न हो पुरुषार्थ में। प्रभावन चर्चा कर रहे हैं, जब आए और जब तक ब्राह्मण हम रहे अंत तक हमारी सदा स्थिति आगे बढ़ती रहे। बोलो क्या करना चाहिए, सुनाओ अनुभव सभी। हाँ, वो अमृत वेले से दिनचर्या को भी जोड़ दें। और बोलो, अपने लिए रोज विशेष समय देना ही चाहिए, इसको चाहे आप एकांत कह लें, जिसमें हम अपने से बातें करेंगे, जिसमें हम अपने से चिंतन करेंगे, अपने को ट्रेंड करेंगे, कुछ कहेंगे अपने को, कुछ याद दिलाएंगे अपने को। ये बहुत जरूरी है, जिससे हमारी मनन शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारा नशा बढ़ता है, जिससे हमें बाबा के साथ के अनुभव होते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर एकांत और महान चिंतन दोनों का उतना ही महत्व है जितना योग अभ्यास का। एकाग्रता इसके बिना नहीं होती। और ब्राह्मण जीवन में, किसी के भी जीवन में, अगर एक बार एकाग्रता नष्ट हो गई तो फिर दोबारा उसको प्राप्त करने में अच्छी मेहनत की जरूरत पड़ती है। वो तो को प्राप्ति नहीं होती सालों साल, कोई अटेंशन देते हैं तो जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी बात क्या करना चाहिए, दो बात आप बताएंगे, बोलो। निरंतर हम आगे बढ़ते रहे, सेवाओं से संबंधित बताए, साक्षी दृष्टा एक बड़ी स्थिति है जो हमें प्राप्त होगी। निरंतर हम आगे बढ़े, सेवाओं का भी उसमें मुख्य स्थान है। सेवाएं किसी किसी को डाउन कर देती हैं और सेवाएं किसी किसी को उड़ा देती हैं। कोई सेवाओं के फील्ड में परेशान रहते हैं और कोई सेवा करके आनंदित रहते हैं। परेशान कौन रहते हैं, मैं और मेरा स्वार्थ। और जो निष्काम भाव से करते हैं, बाबा करा रहा है इस स्मृति से करते हैं, निमित्त निर्माण और निर्मल तीनों धारणाओं को रखते हुए करते हैं, सेवा उनके लिए लिफ्ट का काम करती है। पांचवी बात निकालें, उसमें से एक चुनेंगे, बोलो। शुभ भावना, बोलते जाओ है जोर से जरा, सुमन और बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलो, उसमें से हम चुनेंगे एक बार। मधुर बोल, सुखदाई बोल, और बोलो। हाथ उठा के बोलो। हाँ, हर एक की विशेषता देखना, और बोलो। ट्रैफिक कंट्रोल, और बोलो, और बोलो। अपने लक्ष्य को रोज याद करना, लक्ष्य भूला रहता है आत्माओं से, लक्ष्मीनारायण बनने की बात नहीं, कुछ अच्छे अच्छे लक्ष्य और भी, ये तो सबसे अच्छा है, पर वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे अच्छे लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य, उनको भी हम याद रखेंगे और अपने लक्ष्य को अगर लिखेंगे, मैंने क्लास में ये बात कही थी कि अपने लक्ष्य को अगर 7 बार लिखा जाए सवेरे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन उसे स्वीकार कर लेता है और हमारे ब्रेन की संपूर्ण शक्तियाँ हमें वहाँ तक ले जाने में मदद करने लगती हैं। तो लक्ष्य भी कभी नहीं भूलना है। आप सब देख सकते हैं अनेक आत्माएं लक्ष्य से विचलित होकर जीवन जीते हैं, लक्ष्य को विस्मृत करके जीवन जीते हैं, जाना कहाँ है वो भूल जाते हैं और कहीं भी चल देते हैं। जैसे हमें दिल्ली पहुंचना हो तो हम अहमदाबाद की ट्रेन तो नहीं लेंगे ना, पर ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, पहुंचना दिल्ली है, टिकट ले रहे हैं बॉम्बे की, ट्रेन पकड़ रहे हैं मुंबई की, पहुंचेंगे लक्ष्य पे। तो हमें लक्ष्य के प्रति भी बहुत सजग अवेयरनेस उसकी रहे, ये लक्ष्य है, और ये लक्ष्य केवल संगम युग पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हर एक अपने से बात करेंगे, पहले मैंने कहा वो बहुत सुंदर एक चिंतन है कि क्या इस जीवन में हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए, चिंतन करेंगे। बहुत सुंदर चिंतन होगा। हर आत्मा जो कुछ अब कर रही है उससे बहुत अच्छा कर सकती है या नहीं? ठीक बात। हम सब मेरे सहित सब जो हम कर रहे हैं उससे और बहुत अच्छा किया जा सकता है, इस पे ध्यान दें। और जो कुछ हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, जो चीजें आगे चलकर हमें बहुत काम आएंगी, वो हमें करना ही चाहिए। अब हम तीसरी बात पे चिंतन करेंगे कि संगम युग पर सदा आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों को, किन किन चैलेंजेज को, किन किन चुनौतियों को हमें पहले से ही स्वीकार करके चलना चाहिए कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये चीजें तो आएंगी ही। जैसे भी बरसात हो रही है, हम बाहर चल दिए, बरसात होने लगी, हम भीगेंगे ही, छतरी भी ली है तो भी छींटे तो लगेंगे ही। किन किन चीजों को हम स्वीकार करें ये होंगी ही। बीमारियां वो तो संसारिक लौकिक स्थूल बात हो गई, बोलो समस्याएं आएंगी ही। हम ये न सोचें कि हम बाबा के बन गए तो मुक्त हो गए, समस्याएं आएंगी। और समस्याएं क्या करेंगी? हाँ बहुत अच्छा बोल रहे, बोलो बहने, समस्याएं क्या करेंगी? हमें आगे बढ़ाएंगी, हमें विजयी बनाएंगी और हमें बल देंगी, हमारे विवेक को जागृत करेंगी, हमें आगे बढ़ाएंगी। जैसे समस्याएं धक्का दे देंगी, हमें लगेगा धक्का दे दिया, पर हम जंप लगा जाएंगे। अगर हम स्वीकार करें हमारे साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान है, और ये समस्याएं आएंगी, हमें इन समस्याओं को पार करके ही विजयी बनना है। बाधा दौड़ होती है ना, एक बाधा दौड़ जिसमें बीच बीच में बैरियर लगा दिए जाते हैं और दौड़ने वाले उन्हें दौड़ते दौड़ते पार करते कूदते कूदते चलते हैं। हम भी ऐसा समझ लें, हमारी ये रेस बाधा रेस है, जिसमें बैरियर्स बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, इन सब को कूदते कूदते ही हमें आगे चलना है। ये न हो ऐसा नहीं, ये हैं तो ये हमें क्या बनाएंगे, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। मैं सोच रहा था इस बार हम यात्रा पर गए तो कहीं कहीं बहुत गर्मी थी और लाइट कितनी जाती थी, होता है ना शहरों में रहने वालों को, छोटे टाउन्स में 8-8 घंटे, इन्वर्टर भी खत्म। तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि द्वापर युग से भी कई बार कई लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया और राज्य स्थापित करने में उन्हें बलिदान देने पड़े, कष्ट सहने पड़े, गालियां सुननी पड़ी, असफलता हो जाएगी ऐसा भी प्रतीत हुआ, निराश भी हुए। आप सब देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल, राज्य स्थापित किया शिवाजी ने, राज्य स्थापित किया। ऐसे इतिहास में बहुतों ने राज्य स्थापित किया है। जब कुषाणों ने भारत पर अधिकार कर लिया, मथुरा तक गंगा के इधर इधर सारा विदेशियों का राज्य हो गया था द्वापर युग में, तो जो उधर के राजा का पोतरा था वीरसेन, उसने फिर से राज्य स्थापित किया। लोगों को कष्ट हुए, बलिदान देने पड़े, अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। देखो महात्मा गांधी और उसके साथियों ने जो काम किया, कितना सहन करना पड़ा। हम क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की स्थापना। हम छोटी मोटी कठिनाइयों से विचलित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। बाधाएं आती हैं, स्वयं बाबा ने कह दिया, मैंने यज्ञ रचा, यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, लेकिन हम उन विघ्नों से विचलित नहीं होंगे। देखो जब बाबा साकार में थे, स्थापना के कार्य में जबरदस्त विघ्न पड़े थे, बहुत बहुत बड़े विघ्न पड़े, लेकिन बाबा भी विचलित नहीं हुए और अपने संगठन को भी बाबा ने बहुत स्ट्रांग बनाए रखा। छोड़ने वाले छोड़ के गए, जो बचे उनमें बल भरा और फिर से सब आगे बढ़े। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, चाहे व्यक्तिगत लेवल पर, चाहे टोटल हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें, और आगे बढ़ो। किन चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान अपमान को, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने, कह दिया है मान अपमान, सर्दी गर्मी, हार जीत, सुख दुख, निंदा स्तुति, ये होंगी ही। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सदा हमारी महिमा ही हो, हम बहुत योग्य हैं हमारी महिमा ही हो। व्यक्ति एक्सपेक्ट तो ऐसा ही करता है, परंतु सदा ऐसा नहीं होता, सबको अनुभव है। सेवाओं के फील्ड में भी आप में से कई बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन ये सब होता है, दोनों चीजें होंगी। मान देने वाले बहुत मिलेंगे तो दो चार छिड़कर अपमान भी करने वाले मिल जाएंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया हो, वाह वाह करने वाले भी होंगे, तो लेग पुलिंग करने वाले भी होंगे, टांग भी खींचने वाले होंगे। कोई हमारी सफलताओं से परेशान होकर हमारे विरुद्ध कुछ ऐसा वैसा करने के लिए भी तैयार होंगे, उल्टी सुलटी बातें, षड्यंत्र, उल्टी सुलटी शिकायतें। लेकिन हमें क्या सोच के चलना है, सत्यता को ध्यान से सुन लेंगे, बहुत अच्छी बात सीखी मैंने। अविवेकी जन, बड़ी सुंदर भाषा उन्होंने बोली, अविवेकी जन सत्यता को विवश कर सकते हैं पर हरा नहीं सकते। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, अविवेकी जन समझ गए ना, अनवाइज लोग, सीधी भाषा में जिन्हें मूर्ख कहते हैं, तेज तराक, हाई फाई, चालाक, उस असत्यता के बल पर सत्य पुरुष को विवश तो कर सकते हैं कुछ समय के लिए, थोड़ा झुका सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, विजय सख्त की। हमें इसके लिए अपने को धैर्य चित्त रखना होगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहना होगा, इंतजार भी करनी पड़ेगी। हमें दिखाई देगा सत्य तो डूब रहा है, सत्य की तो हार ही हार है सब जगह, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। ये लोग ये प्रश्न लोग बहुत पूछते ही रहते हैं, अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं, जो खराब लोग हैं वो विजयी, ओ हम ही सब कुछ विजयी, पावरफुल, हमारी जीत, हम ही आगे बढ़ रहे हैं। पर रियल में आगे बढ़ना किसे कहते हैं? जो स्थिति में आगे बढ़े, जो निष्काम और निर्मल हो जाए, जिसने अपनी पवित्रता को बहुत सुंदर कर लिया हो, जो योगयुक्त रहते हो। बाकी सब चीजें काम नहीं आएंगी हमारे इस ईश्वरीय कार्य में, तो रियलिटी सत्यता प्रसिद्ध होगी। जय जयकार उन्हीं की होगी, बाकी सब चीजें दब जाएंगी। तीसरी बात क्या स्वीकार कर लेना चाहिए? पीछे वाले बोल सकते हैं दो बातें बहुत अच्छी बोल दी, तीसरी स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। सोच लो क्या क्या स्वीकार करते हैं हम। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, अपनी मेंटलिटी बना लें, अपना मन बना लें, उनको स्वीकार करके शांत। हाथ उठा के बोलेंगे तो मेरा ध्यान जाए। कर्म भोग को भी स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। सबने स्वीकार किया ना, बाबा मामा दादियां सब ने स्वीकार किया और उसी में अपनी स्थिति को महान बना लिया, प्रकृति के मालिक बन गए। यहाँ अपने यहाँ कोई कल परसों भूकंप हुआ क्या है? हुआ? मुझे एक आज ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, कहा अबू में भूकंप हुआ है। मैंने कहा भाई हमें तो पता नहीं, कहा 5.3 का था। कहा मैं योग में बैठा था, उसको वहाँ फील हुआ, मुझे लगा अबू हिल रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया में। कहा मैंने फट से अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। एक मिनट के बाद सब शांत हो गया। अब उसे एक मिनट वहाँ पता चला, यहाँ कितना आया हमें पता नहीं, कभी हमें तो पता नहीं चला। बड़ा खुश था, प्रकृति ने मेरी बात सुन ली। जैसे ही मैंने अभ्यास किया मैं प्रकृति का मालिक हूँ, शांत होने लगी प्रकृति। तो ये अच्छी बातें हैं ना, नशा। तो हम कर्म भोग को भी स्वीकार करेंगे और उन बातों को भी जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, चाहे हम यज्ञ में हैं, सेंटर में हैं, आप अपने घर में रहते हैं, सब जगह वो सब कुछ होता रहता है। जो हम नहीं चाहते, जो हम देखना नहीं चाहते। मुझे एक बात आप सबको आ ही रही मेरे मन में, मैं सोचता हूँ अभी कहूँ। बहुत सारे परिवार अपने युवकों से बहुत दुखी होते जा रहे हैं। माताओं को मैं खास कहता हूँ, अपने अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ। आज ही मुझे एक ने बताई, बचपन से ही ज्ञान में लड़का, अभी 17 साल का है, कहा वो 17 साल का लड़का वो सब कुछ कर रहा है जो संसार में कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति करता है। कहा बस और कुछ मैं नहीं बताना चाहूंगा, बाप का गला पकड़ लेता है मारने के लिए। देखो कहां तक। तो माता इन सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए अपने अपने घरों में योग के वाइब्रेशंस बनाएं। समस्याएं नहीं तो बढ़ती जाएंगी, और एक बार मनुष्य समस्याओं में इन्वॉल्व हो गया ना, फिर तो योग भी नहीं लगता, कुछ नहीं कर पाते। बेचारे माँ बाप का हाल ऐसा था, सुन के ही दया आ रही थी कि देखो कर्मों का हिसाब किताब कैसा है। उसमें भी माँ बाप कितने परेशान होते हैं जब वो ये सोचते हैं इन बच्चों के लिए हमने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, न नींद देखी न खाना देखा, सर्वस्व माँ बाप कुर्बान करते हैं ना बच्चों के लिए, सब बैठे हैं ना, और ये अब गला पकड़ रहा है, थप्पड़ मार रहा है बाप को। तो ये कलयुग के अंत का प्रभाव युवा वर्ग पे बहुत हो रहा है ना, इससे बचाने के लिए अपने बच्चों को आप विशेष ध्यान दें, अपने अपने घरों में योग के वाइब्रेशंस फैलाएं, ये जान लें इन चीजों से बिना योग शक्ति के दूसरों को हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी और चरित्रवान हैं, वो तो समझ लें बहुत भाग्यवान हैं, मोस्ट फॉर्चुनेट, उनके तो पुण्य बहुत ज्यादा हैं। बाकी को योग बल से हमें ठीक करना है। अपनी भी स्थिति बिगड़ जाती है ऐसे में, और स्थिति बिगड़ी तो हमारे बोल में भी प्रभाव नहीं रहता, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और आगे चलो, किसी को याद आ रहा है क्या स्वीकार करें? बहुत जरूरी हैं ये चीजें, कुछ हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, उनके लिए हम अपने को तैयार रखें। हम यज्ञ सेवा में हैं, हम सब सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी सेवा कर लें और हमारे बड़े हमें कुछ भी कह दे, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो बेकार हो, तो भी हमें कुछ चीजों में अपने को हल्का रखना ही है। अपने में विश्वास, अपने कर्मों में विश्वास, पुण्य कर्म बढ़ाते चलना और अपने स्वमान को भी बढ़ाते चलना, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहे और आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हमें देनी होंगी विनाश काल में, उनके लिए हम स्वयं को भी तैयार करें और दूसरी आत्माओं को भी हमें मदद करनी है। सभी इस लक्ष्य को लेकर अब पुरुषार्थ को करें कि हमें विनाश काल में अनेक आत्माओं को मदद करनी है। ये बड़ा कार्य हम सबको करना ही होगा, ये हमारे द्वार पर आ जाएंगे ये काम। जैसे प्यासा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति हमारे द्वार पे आ खड़ा हो, मैं तो पानी पी के ही जाऊंगा, हमें देना पड़ेगा ना, तो अपने को तैयार करेंगे हम इसके लिए। तो सभी बिल्कुल ढिलाई अपने अंदर नहीं आने देंगे, याद कर लेंगे फिर से उन सब बातों को जो हमें करनी है। नो रिएक्शन, नो इफेक्ट, ध्यान देंगे इन बातों पे। बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं, हमें अफेक्ट करती हैं। बातें आकर हमें अफेक्ट करती हैं। मनुष्य कभी कभी जब पानी सिर से उतर जाता है तो रिएक्ट भी करना पड़ता है उसको। बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये तो चिकने गड्ढे हैं, ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, पता नहीं किसने बना दिया इनको। कोई और भी गुस्साएगा तो कहेंगे बुद्धि नहीं है इनको, तो बिल्कुल बुद्धू है ये तो, क्योंकि हम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे ना। कभी कभी दूसरा व्यक्ति को सुनना भी चाहता है, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी तो राय है कि कभी कभी कोई व्यक्ति एक बात सुन के सदा के लिए शांत हो जाता है, उसे सुना देना चाहिए, ठीक है या नहीं? सुनते तो सदा ही है, 100 बार सुन के एक बार सुना दे, स्वदर्शन चक्र चला दें 100 गालियों के बाद, ठीक रहेगा ना, शिशुपाल का वध हो जाएगा। थोड़ा बैलेंस इस तरह का हमें रखना भी पड़ेगा या नहीं, क्या विचार है आपका, आगे वालों का क्या है, करना पड़ेगा नहीं? कभी कभी करना भी होता है, नहीं तो कभी कभी हमारे अति चुप रहने से समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कटु वचन बोलने वाले हावी होते जाते हैं, वो समझते हैं ये तो कायर हैं, तो हमें थोड़ा सा उत्तर भी कभी कभी दे देना चाहिए। हमें वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्या काम दिया हुआ यज्ञ के लिए, कौन कौन कर रहे हैं, 15 मिनट जो जो कर रहे हैं हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। जो ढीले हो गए वो फिर से चालू करेंगे 15 मिनट घूमकर। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, या स्वयं मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या योग युक्त होकर वाइब्रेशन फैलाएंगे शांति वन में घूमकर, ताकि आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे ना यहाँ, लाखों तो अब भी आते हैं, पर लाखों आएंगे इसका मतलब रोज लाखों आएंगे। सवेरे आएंगे, ब्रह्मा भोजन खाएंगे, शाम को जाएंगे, गठरी सिर पे रख के आबू की यात्रा कराएंगे। देखिए ना, ये मंदिरों में जाते हैं माताएं गठरी सिर पर यात्राएं कराती हैं। ये स्थिति यहाँ बनने जा रही है, हार्डली 5 साल लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम सभी इस स्थान के वातावरण को ऐसा बना दें कि यहाँ की मिट्टी भी अगर कोई मस्तक पे लगा दे तो बुद्धि दिव्य हो जाए। ये हमें करना होगा, करना होगा सीमा बहन या नहीं, इसकी जरूरत है। तो एक ये काम, और दूसरा काम एक और 15 मिनट सभी बिल्कुल अपने को जिम्मेदार समझते हुए, मालिक समझकर, पूर्वज समझकर, अपने संपूर्ण यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए 15 मिनट योगदान। कोई भी टाइम, दो स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। और तीसरा संकल्प करेंगे, बाबा का ये संपूर्ण यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। ये संकल्प भी जरूरी है, चाहे विघ्न डालने वाले कोई भी हो, लेकिन हम विघ्न विनाशक हैं, हम विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हैं। विघ्नों को हमारे सामने हार माननी ही है। ये दोनों काम हम करते रहेंगे। बाबा की सभी बातें और याद कर लें, एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत मूल्यवान, बहुत महान है। एक एक संकल्प महान है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला है, हमें एनर्जी देता है हमारा एक एक संकल्प। मैं एक कुमार की कहानी सुनाऊं, दो की सुना दूं, एक की उल्टी एक की सीधी, दोनों कहानियां होती है ना। सवेरे 8 बजे ड्यूटी पर चले गए, शाम को 8 बजे आए, लंबा समय हो गया ना 12 घंटे, कोई भी मनुष्य थक जाएगा। अब भोजन बनाना है, अरे भैया कैसा जीवन मिला, मुसीबत। बाबा तो अच्छा है, ज्ञान योग सब अच्छा, पर ये धंधे और किचन, भोजन बनाना, किचन संभालना, अलग टाइम चाहिए ना। उल्टे थक के आए, दिल्ली गुड़गांव से दिल्ली गए, 1.5 घंटा बस या किसी गाड़ी में थक गए, अब खाना बनाना है, छोड़ो ये जीवन। कुमार ढीले, कुमार बीमार, दूसरा कुमार भी यही 8 बजे जाता है, शाम को 8 बजे आता है, आते ही सोचता है मेरे साथ तो 1000 भुजाओं सहित बाबा है, वाह बाबा आ जाओ नीचे, बनवाओ मेरा भोजन और खिलाना भी तुम भी खा लेना थोड़ा सा। बातें करता है, आनंदित होता है, भोजन बना बना के खा पी के सो जाता है मस्ती में, सवेरे उठता है फिर अपने को चार्ज कर लेता है। संकल्प पावरफुल बना देते हैं, संकल्प नष्ट कर डालते हैं। संकल्प महान है, महान बनाना है हमें अपने संकल्पों को। समस्याओं के आगे पहाड़ की तरह स्ट्रांग, चट्टानों की तरह खड़े होना ही पड़ेगा सभी को। मैं कुमार कुमारियों को तो केवल कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें और मजबूत हमें बनाना है, पर सभी ग्रस्त में रहने वालों को अपने को बहुत स्ट्रांग करना है। बाबा ने हम सबको काम दिया, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये अभ्यास यानी 500 स्वरूपों का अभ्यास। स्वराज्य अधिकारी देखना चाहते हैं बाबा हमें, संस्कार परिवर्तन, ज्वालामुखी योग, इन सब पे हम पुनः पुनः ध्यान देंगे। सकाश देना, बाबा ने कहा है कि पावरफुल सकाश दो, उन्हें पता चले कहाँ से कौन सकाश दे रहे हैं, और बाबा ने ये बता दिया ये होगा ही, कहाँ से और कौन सकाश दे रहे हैं। तो इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे। सोमान चुन ले तीन, बोलो एक विशेष काम करना है इस बार हम सबको, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना है रोज एक बार वतन में। मेरा संपूर्ण स्वरूप ये है, चित्र बनाएंगे सभी उसकी, एक विजन बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैं याद दिला दूं आप सबको, एक मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में ग्लोब को सकास, और तीन मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में पांच स्वरूपों का अभ्यास, ये भूलना नहीं है। तो हमारा ये समय बहुत एनर्जी देने वाला हो जाएगा, एक एक मिनट तीन तीन मिनट हमारे लिए वरदान बन जाएंगे कि अटेंशन से ही सबको ये कार्य करना है। तीन सोमान चुन लें, बोलो पहला हाथ उठा के, विघ्न विनाशक हूँ, ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और माता जी क्या है, बोलो अब तीसरा नंबर माताओं का, हाँ बोलो माता जी का यही था, बोलो मैं विजय रत्न हूँ, ठीक है, ये तीन सोमान बहुत सुंदर, विजय रत्न, मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक, तीनों वरदान भी हैं, सोमान भी हैं, स्मृतियां भी हैं, तीनों का खूब अभ्यास करेंगे और एंजॉय करेंगे इस समय को, ठीक है। ओम शांति। चलें अभी अपने संपूर्ण